नमस्कार भारत, आज है 29 अगस्त दिन मंगलवार और मैं हूं कुलदीप मिश्र। इस बार जापान के ऊपर से उड़ी उत्तर कोरिया की मिसाइल, वरिष्ठ अधिकारी ने बताया अभूतपूर्व गंभीर खतरा। अदालत ने सजा सुनाने के साथ गुरमीत राम रहीम को कहा जंगली जानवर, लेकिन डेरा समर्थकों की उम्मीद कायम।
सबने देखा हुआ है क्या है यहाँ पे, डेरा एक खुली किताब की तरह, यहाँ कुछ छुपा नहीं हुआ।
उम्मीद
छोड़ने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, यकीन था और यकीन रहेगा।
क्या है डोकलाम मुद्दे पर भारत और चीन के बीच समझौते के मायने, सीना ठोकने का जायज हक किसे?
ये समझने की कोशिश नहीं करते हैं कि लोकल ऑडियंस को खुश करने की कोशिश की जा रही है। इसको अगर चैलेंज करते हैं और कहते हैं अरे नहीं नहीं उनको तो हमने भगाया, तो हम फिर से प्री डोकलाम वाले परिस्थिति में आ गए।
होगी अखबारों की समीक्षा और खेल की खबरें भी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार दिलनवाज पाशा से। उत्तर कोरिया ने एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी है जो समुद्र में गिरने से पहले जापान के ऊपर से होकर गुजरी है। जापान के होकाइडो द्वीप के ऊपर से गई इस मिसाइल ने पूर्व दिशा में करीब 3000 किलोमीटर का सफर तय किया है। मिसाइल के कारण जापान में चेतावनी सायरन बज गए और लोगों से तहखानों या मजबूत इमारतों में शरण लेने के लिए कहा गया। जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने कहा है कि ये मिसाइल जापान के लिए अभूतपूर्व और गंभीर खतरा है। हाल के महीनों में उत्तर कोरिया ने कई मिसाइल लॉन्च किए हैं, लेकिन कोई भी जापान के ऊपर से नहीं गया है। इस नए मिसाइल लॉन्च से क्षेत्र में तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हाल ही में उत्तर कोरिया ने अमेरिका तक पहुंच सकने वाली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब परीक्षण किया था। यही नहीं, उत्तर कोरिया ने चेतावनी दी थी कि उसकी प्रशांत महासागर स्थित अमरीकी क्षेत्र ग्वाम पर मिसाइल हमला करने की योजना पूरी तरह तैयार है। सीबीआई की विशेष अदालत ने धर्मगुरु बाबा गुरमीत राम रहीम को बलात्कार के दो मामलों में 10-10 साल की सजा सुनाई है, जो अलग अलग चलेंगी। यानी अब बाबा राम रहीम को 20 साल जेल में बिताने पड़ेंगे। मुख्य राजनीतिक दलों ने सीबीआई की विशेष अदालत के इस फैसले का स्वागत किया है। भाजपा ने जहां फैसले को सही बताया है, वहीं कांग्रेस ने कहा है कि इससे स्पष्ट हो गया है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। फैसला सुनाने वाले जज ने राम रहीम को जंगली जानवर कहा है, जिसने अपने शिष्यों को भी नहीं छोड़ा। फैसले के मद्देनजर हरियाणा और पंजाब में सुरक्षा के बेहद सख्त इंतजाम किए गए थे। शुक्रवार को जब राम रहीम को दोषी करार दिया गया था, तब हुई हिंसा में 38 लोग मारे गए थे। टेक्सास प्रांत के गवर्नर ग्रेग एबॉट का कहना है कि प्रांत के सभी 12,000 नेशनल गार्ड सदस्यों को बचाव अभियान में लगाया जाएगा। बीबीसी संवाददाता के मुताबिक तूफान और बाढ़ से हुई तबाही की वजह से प्रशासनिक अमले पर बोझ बहुत ज्यादा है और जरूरतमंद लोगों को अपना बचाव खुद करना पड़ रहा है। ह्यूस्टन शहर में रिकॉर्ड बारिश हुई है, जो अगले कुछ दिनों तक जारी रह सकती है। तूफान हार्वी के कारण अब तक 9 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने टेक्सास प्रांत की हर संभव मदद करने का भरोसा दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा,
Recovery will be a long and difficult road, and the federal government stands ready.
नुकसान की भरपाई मुश्किल और लंबा काम होगी और संघीय सरकार इसमें हर संभव मदद देने के लिए पूरी तरह तैयार खड़ी है। अभी फिलहाल सबसे जरूरी बात यह है कि जो लोग मुश्किलों में फंसे हैं, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। इसमें सबसे पहले गए बचाव दल के बहादुर लोग भी शामिल हैं। अपने नागरिकों की जान बचाना ही मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है। ये थे राष्ट्रपति ट्रंप के शब्द, आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के भूमध्य सागर से आने वाले प्रवासियों की संख्या कम करने के लिए 3 सूत्रीय कार्यक्रम को समर्थन मिल रहा है। इसके तहत चाड और नाइजर जैसे ट्रांजिट देशों में प्रवासियों के लिए आवेदन केंद्र बनाए जाएंगे। अफ्रीकी और यूरोपीय नेताओं की बैठक में राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के मानदंडों पर प्रवास के वैध दावे वाले प्रवासियों को यूरोप लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया से वो लोग खतरनाक यात्रा पर नहीं आएंगे, जिन्हें प्रवास मिलने की उम्मीद ही नहीं होगी। मैक्रो के कार्यक्रम के तहत लीबिया में राजनीतिक संवाद बढ़ाया जाएगा और मानव तस्करों से निपटने के लिए सुरक्षा के अतिरिक्त इंतजाम किए जाएंगे। अमेरिका के न्यू मैक्सिको प्रांत की एक लाइब्रेरी में गोलीबारी की घटना की खबरें हैं। क्लोविस शहर के एक अधिकारी ने बताया है कि 2 लोगों की मौत हो गई है और 4 घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। राष्ट्रपति ट्रंप पुलिस को सैन्य उपकरण मुहैया कराए जाने पर पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा लगाई गई रोक को हटाने जा रहे हैं। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत रेडियो के साथ साथ bbchindi.com मोबाइल और फेसबुक पर लाइव और मैं हूं कुलदीप मिश्र। उत्तर कोरिया ने आज सुबह फिर एक मिसाइल परीक्षण किया है और इस बार ये ज्यादा गंभीर इसलिए है क्योंकि मिसाइल जापान के ऊपर से उड़ते हुए समुद्र में गिरी है। उत्तर कोरिया के ताजा परीक्षणों की श्रृंखला में अब से पहले कोई मिसाइल जापानी जमीन के ऊपर से होकर के नहीं गुजरी। जाहिर है इससे दोनों देशों के बीच जारी तनाव और बढ़ सकता है। ज्यादा जानकारी के साथ दिलनवाज पाशा।
जी, ये मिसाइल सुबह 6 बजे के आसपास राजधानी प्योंगयांग के पास से दागी गई है। जापानी सागर से होते हुए यह मिसाइल उत्तरी जापानी द्वीप होकाइडो के ऊपर से होकर गुजरी, जो जापान से करीब 1000 किलोमीटर दूर पूर्व में प्रशांत महासागर में जा गिरी। जब यह मिसाइल जापान की ओर बढ़ रही थी, तब देश के उत्तरी इलाकों में चेतावनी देने वाले सायरन बज उठे। स्थानीय अधिकारियों ने लोगों से मजबूत इमारतों या बेसमेंट में सुरक्षित छुपने के लिए कहा। हालांकि जापान की ओर से इस मिसाइल को मार गिराने का कोई भी प्रयास नहीं किया गया। मिसाइल लॉन्च के बाद परेशान दिखे जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे कुछ ही मिनट बाद राष्ट्रीय टीवी पर आए और देश के नाम दिए संबोधन में कहा कि उनकी सरकार देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर मुमकिन कदम उठाएगी। उत्तर कोरिया ने इससे पहले 2 बार जापान के ऊपर से रॉकेट दागे हैं, एक बार 1998 में और दूसरी बार 2009 में। हालांकि तब उत्तर कोरिया ने दावा किया था कि इन रॉकेटों में हथियारों के बजाय उपग्रह थे। उत्तर कोरिया ने हाल के महीनों में कई बार मिसाइल परीक्षण किए हैं, लेकिन वो जापान के ऊपर से मिसाइल दागने से बचता रहा है। ये पहली बार है जब उत्तर कोरिया मिसाइल जापान के ऊपर से गुजरी है और यही वजह है कि इस मिसाइल लॉन्च के बाद से क्षेत्र में तनाव अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने इस मिसाइल लॉन्च को अभूतपूर्व और गंभीर खतरा बताया है और कहा है कि इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और शांति को बड़ा नुकसान पहुंचा है। वहीं दक्षिण कोरियाई सेना का कहना है कि इस मिसाइल ने करीब 2700 किलोमीटर का सफर तय किया। सुरक्षा हालात की समीक्षा करने के लिए दक्षिण कोरिया की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई गई है। अमेरिका ने कहा है कि इस मिसाइल लॉन्च से अमेरिका को कोई खतरा नहीं है और सेना इसके बारे में अधिक जानकारी इकट्ठा कर रही है।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
10 नहीं 20 साल, डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत सिंह राम रहीम को साध्वियों से बलात्कार के 2 मामलों में 10-10 यानी कुल 20 साल कैद व बामशक्कत की सजा सुनाई गई है। रोहतक की सुनारिया जेल में लगी सीबीआई की विशेष अदालत ने यह फैसला सुनाया। सिरसा से फैसल मोहम्मद अली की रिपोर्ट।
सीबीआई की विशेष अदालत ने कल यानी सोमवार दोपहर बाबा राम रहीम को बलात्कार के 2 मामलों में सजा सुनाई। उनके वकील एसके गर्ग ने कहा,
दोनों केसेस में रेप केसेस में कन्विक्ट कर दिया है। ही हैज बीन सेंटेंस्ड फॉर 10 इयर्स फॉर वन ऑफेंस एंड अगेन ही हैज बीन सेंटेंस्ड फॉर 10 इयर्स इन द अदर ऑफेंस एंड टोटल सेंटेंस वुड बी अबाउट 20 इयर्स। और 15-15 लाख रुपए उन्होंने फाइन लगा दिए, जिसमें से 14 लाख रुपए ईच दोनों लड़कियों को देना है।
यह सजा डेरा सच्चा सौदा प्रमुख को जेल में ही तैयार एक कोर्ट में सुनाई गई। ये अदालत हाई कोर्ट के विशेष आदेश से स्थापित की गई थी। किसी भी गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए स्थानीय पुलिस के अलावा 20,000 अतिरिक्त सुरक्षा बलों की नियुक्ति पूरे हरियाणा में की गई थी, जिसमें ITB, CRPF और सशस्त्र सीमा बल के जवान शामिल थे। फौज को भी स्टैंड बाई पे रखा गया था। IG पुलिस ने सिरसा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा,
बिल्कुल शांति से आज दिन निकला है अभी तक और मुझे उम्मीद है कि शांति बरकरार रहेगी।
सिरसा डेरा सच्चा सौदा का मुख्यालय है। इस बीच इसी मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए बाबा रामदेव का कहना था,
कोई भी व्यक्ति अपराध करके बच नहीं सकता, उसका एक बहुत बड़ा ये एग्जाम्पल सेट किया है कोर्ट ने। और जो भी तथाकथित ताकतवर लोग हैं, मुझे लगता है वो जरूर इससे सीख लेंगे और पाप करने से बचेंगे। देर से सही इतना बड़ा निर्णय तो आया।
प्रशासन का कहना है कि उनकी पहली प्राथमिकता शांति व्यवस्था बनाए रखने और अदालत के आदेश को लागू करवाने की थी। अब वो उन लोगों को चिन्हित करेंगे जिन्होंने तोड़फोड़ और दूसरी तरह की हिंसा फैलाई थी और उनके खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। फैसल मोहम्मद अली, BBC, सिरसा।
सिर्फ 20 साल जेल की सजा ही नहीं थी जो कल गुरमीत राम रहीम पर वज्रपात बनकर टूटी। उन्हें सीबीआई की विशेष अदालत की तीखी टिप्पणियों से भी दो चार होना पड़ा। मोहनलाल शर्मा मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप बताएं कि विशेष जज जगदीप सिंह ने गुरमीत राम रहीम के बारे में अपने फैसले के साथ क्या क्या कहा है।
कुलदीप, दोषी गुरमीत राम रहीम ने एक जंगली जानवर की तरह बर्ताव किया और अपनी पवित्र महिला अनुयायियों को भी नहीं बख्शा, ये कहना है विशेष जज जगदीप सिंह का, जो कि उन्होंने नौ पन्ने में गुरमीत राम रहीम के बारे में कहा। उन्होंने कहा कि पीड़िताओं ने गुरमीत राम रहीम को ईश्वर जैसा सम्मान दिया, लेकिन गुरमीत ने उनके साथ सबसे गंभीर किस्म का अपराध किया। जैसा कि हम जानते हैं कि राम रहीम ने अदालत से गुहार लगाई कि मानवता के तथ्यों को देखते हुए, उनके कामों को देखते हुए उनकी सजा में नरमी बरती जाए, तो अदालत का कहना था कि वो शख्स जिसे मानवता की कोई चिंता नहीं है और जिसके स्वभाव में कोई दया नहीं है, वो उदारता के लायक नहीं है। टिप्पणी की कि धार्मिक संस्था के प्रमुख बताए जाने वाली शख्सियतों के ऐसे आपराधिक कृत्य देश के पवित्र आध्यात्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संस्थानों की छवि को बहुत पहले से बर्बाद करते आ रहे हैं। अदालत ने यह भी कहा कि दोषी के कामों से इस प्राचीन भूमि की विरासत को अपूर्णीय क्षति पहुंची है। और आखिर में उनका कहना था, जगदीप सिंह का जो कि जज थे, इस मामले के तथ्यों और हालात को ध्यान में रखते हुए कोर्ट को लगता है कि अगर दोषी के अपनी महिला अनुयायियों का यौन शोषण और उन्हें अंजाम भुगतने की धमकी देने की बात को मद्देनजर रखे तो ऐसा व्यक्ति अदालत की उदारता के काबिल कतई नहीं।
शुक्रिया मोहनलाल शर्मा। ये मामला आगे बढ़ पाया इसका बड़ा श्रेय दिवंगत पत्रकार रामचंद्र छत्रपति को दिया जाता है। उन्होंने ही अपने अखबार पूरा सच में पहली बार आरोपों वाली चिट्ठी छापी थी, लेकिन साल 2002 में छत्रपति की उनके घर के बाहर हत्या कर दी गई थी। अब उनके बेटे अंशुल अपने पिता की हत्या का मुकदमा लड़ रहे हैं। कल गुरमीत को सजा सुनाए जाने के बाद हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने अंशुल से संपर्क किया और उनकी प्रतिक्रिया पूछी।
न्यायपालिका को इसके लिए सैल्यूट करना चाहूंगा, जो उन्होंने मतलब मेरे फादर ने लगातार एक मुहिम चलाई समाज को, सोसाइटी को जागरूक करने के लिए कि ये कोई संत नहीं है डेरा प्रमुख, ये संत के लबादे में एक शैतान बैठा हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं देश के लोगों में जो एक धार्मिक आस्था जिस तरीके का प्रश्न चिन्ह थे, इस वजह से लोग मानने से इनकार कर रहे थे। और उनकी इन्हीं बातों को लेकर जब हमारे फादर की शहादत हुई, तो आज 15 साल से लगातार हम इस स्ट्रगल को लड़ रहे थे, तो आज जिस तरह के हालात बने, आज जो फैसला आया, उस फैसले ने हमारे फादर की उन बातों पर, हमारी उस स्ट्रगल पर मोहर लगाई है कि ये वाकई में एक गुनाहगार है गुरमीत राम रहीम, एक रेपिस्ट है, ये कोई संत नहीं है, संत के वेश में शैतान है। इस बात पर उन्होंने मोहर लगाई है, ये बात ज्यादा मायने रखती है।
हम जानना चाहेंगे क्या आपको दिक्कतें आईं, किस तरह से आपने अपने मुहिम को जारी रखा?
दिक्कतें काफी थी क्योंकि एक ताकतवर मतलब शक्ति के सामने हमारी लड़ाई थी। इस वजह से क्योंकि उन लोगों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था, सत्ता का संरक्षण प्राप्त था, और उनको मतलब उनके पास मैन पावर और मनी पावर की कोई कमी नहीं थी, तो ऐसी ताकत के खिलाफ लड़ना और सीमित साधनों के साथ लड़ना एक बहुत बड़ी बात थी। और लगातार मतलब हमारे दिमाग में इस बात की चिंता थी क्योंकि इनको सत्ता का संरक्षण प्राप्त है कि कहीं हमें इंसाफ जो है वो मिल भी पाएगा या नहीं। लेकिन एक उम्मीद थी मन के अंदर कि एक जो आम आदमी होता है देश का, उसको कहीं ना कहीं जो बची खुची उम्मीद होती है वो न्यायपालिका से होती है। तो हमने भी न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाया, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हुई, सीबीआई के उस ऑफिसर को सैल्यूट जिसने ये फेयर इन्वेस्टिगेशन की, और आज ये सारा का सारा मामला इस मुकाम तक पहुंचा।
आज आपके पिताजी नहीं है, उनकी मौत हो गई है, आपने इस स्ट्रगल को आगे बढ़ाया, क्या आपको भी किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना करना पड़ा?
हमें लगातार मतलब प्रलोभन दिए गए, इनडायरेक्टली कंप्रोमाइज के लिए ऑफर किया गया, लेकिन हमारी लड़ाई जो थी एक विचार के साथ लड़ी जा रही थी, एक विचार के साथ खड़े थे हम। इस बात का उन लोगों को भी पता था, इसलिए उन्होंने हमें डायरेक्टली कभी थ्रेट करने की दोबारा कोशिश नहीं की, कभी दोबारा खरीदने की कोशिश नहीं की। दूसरी बात, ये मेरी अकेले की लड़ाई नहीं थी, मेरे फादर एक एडवोकेट भी थे, एडवोकेट्स बहुत से लोग, उनके मित्र और बहुत से मीडिया के लोग, बहुत से साहित्यकार, बहुत बड़ा सबका हमारे साथ खड़ा था। जिन लोगों का एक फुल कोऑपरेशन हमारे साथ था, वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे।
गुरमीत राम रहीम को दो मामलों में सजा हुई है, लेकिन आपका मामला अभी जारी है, आपके केस की अभी क्या स्थिति है और क्या उस पर अब फैसला आना है?
अभी फाइनल आर्गुमेंट की स्टेज पर है केस, फाइनल आर्गुमेंट पेंडिंग है। जैसे ही फाइनल आर्गुमेंट कंप्लीट होगा तो फैसला सुनाया जाएगा। अभी कुछ समय लग सकता है, देखिए कि फाइनल आर्गूमेंट कितने टाइम में कंप्लीट होएगा। सीबीआई कोर्ट जिसने आज ये जिस जोन से जज साहब ने आज फैसला सुनाया है, ये डेरा हेड को लेकर जितने जो तीन मामले जो चल रहे थे, ये तीनों के तीनों एक ही कोर्ट के अंदर चल रहे थे।
ये थे दिवंगत पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के बेटे अंशुल। इस फैसले में बहुत सारे लोग अपनी जीत देख रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हताश भी हैं, दुखी भी हैं। सिरसा में ही सरोज यादव और उनके बेटे सोनू यादव रहते हैं। उनके घर में गुरमीत राम रहीम पूजे जाते हैं। वहाँ उनकी तस्वीरों वाले बड़े बड़े कैलेंडर हैं। कल शाम वहाँ टीवी चल रहा था और उस पर उनके गुरु को सजा सुनाए जाने की खबर दिखाई जा रही थी। सिरसा में इस डेरा समर्थक परिवार के घर पहुँची बीबीसी संवाददाता शालू यादव। सुनिए ये बातचीत।
देखो, बाबा जी ने हमें शुरू से अच्छी शिक्षा दी, रहने का ढंग सिखाया, मतलब एक मॉरल जो वैल्यूज दुनिया की हैं और सबके लिए जो हमारी भावना होनी चाहिए वो हमें बाबा जी ने सिखाई, गुरु जी ने सिखाई। मतलब जो एक बाप अपने बच्चों के लिए करता है वैसा किया।
माँ बाप तरह है, बहुत अच्छी है। मेरे को 25-26 साल हो गए नाम ले को, तो कोई दुख तकलीफ आती पहले हमारे को टाल देते, वो बता देते, तो बहुत ज़्यादा हमारे कर्म काटे उनने, तो हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा माँ बाप से बढ़कर थे।
तो आंटी ये बताइए कि उन्होंने किस तरीके, आपने कहा कि आपने इतने सालों से 20 साल से ऊपर आपने उनका नाम ले रखा, तो उन्होंने किस तरीके से आपको इंस्पायर किया, किस तरीके से आपको?
वो जी पहला भी साढ़े जिम मेरे सास सोहरा सी बुजुर्ग से उन्होंने ले रखा सीगा, फिर जिमें बड़े घर चों भी जाते हैं फिर उवें फिर बच्चे भी उवें हो जाते हैं ना। डेरा ही सीगा साढ़ा, डेरा ही है अभी तक भी, असं गुरु नूं बहुत ज़्यादा मानते हैं। असं
हम जो गुरु मंत्र का जाप करते हैं तो उससे हमें
शक्ति मिलती है,
अंतरात्मा से शक्ति मिलती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, तो वो एक चमत्कार से कम नहीं है।
चमत्कार बहुत है साडे
नाल। लाइक माई फादर, इनको जैसे ब्रेन स्ट्रोक हुआ था 2006 में ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, तो हम यहाँ इलाज चला पहले, फिर हम इनको ले गए चंडीगढ़, वहाँ ऑपरेशन होना था। तो जैसे ही पीजीआई में पहुँचे तो पापा गुरु मंत्र का जाप कर रहे थे, जैसे ही पीजीआई में पहुँचे तो ऑपरेशन थिएटर से इनको वापस भेजा डॉक्टर ने, भी आप ठीक हो चुके हो, इससे बड़ा चमत्कार हमारे लिए क्या होगा चंडीगढ़ में।
तो ये बताइए, फाइनली हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी जो शुक्रवार को कोर्ट ने जो फैसला सुनाया उनके खिलाफ, तो वो फैसला जब आया तो वो वक्त कैसा था आपके लिए, क्या मामला?
देखिए, हमें अपने गुरु पर पूरा यकीन है, वो जस्ट राजनीतिक षड्यंत्र है, सभी जानते हैं सच्चाई क्या है, जो भी न्यूज़ चैनल्स पे दिखा रहे हैं सब गलत है, एक जस्ट नेगेटिव थॉट दे रहे हैं दुनिया को, क्योंकि न्यूज़ पे वही चलता है जो गलत होगा, अच्छा दिखाएगा तो वो कोई नहीं देखेगा। हमें पता है 6 करोड़ लोग हैं, सब आते हैं यहाँ पे, गलत नहीं हो सकते 6 करोड़ लोग।
फैसला ने दुख होया सीगा, ज़्यादा ही होया सी दुख, सानू बहुत ज़्यादा होया सी, भी गलत है भी सच्चे गुरु है, उन्होंने एडे वे इल्जाम लाए है, झूठे लाए है सारे, तो भी दुख तो बहुत आया सी सानू, अज भी दुख हैगा ही है, अज और सजा सुनाती जड़ी, दुख तो है।
देखिए, दुख तो जरूर है पर पूरा यकीन है कि ज़्यादा नहीं चलने वाला ये। सब ने देखा हुआ है क्या है यहाँ पे, डेरा एक खुली किताब की तरह, यहाँ कुछ छुपा नहीं हुआ,
उम्मीद
छोड़ने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, यकीन था और यकीन रहेगा।
यकीन है, अभी भी यकीन है, भी सच्चाई दी जीत हो।
पहले भी कुछ राजनीतिक पार्टियों ने गलत फसाया डेरे को, जैसे 2002 से लगे हैं पीछे ये।
डेरा के एक अनुयायी परिवार से बात कर रही थी शालू यादव। अब वक्त है दिल्ली से निकलने वाले अखबारों की सुर्खियों का। दिलनवाज पाशा स्टूडियो में मौजूद हैं। दिलनवाज, क्या कहते हैं आज के अखबार?
जी, आज के सभी अखबारों पर बाबा गुरमीत राम रहीम की तस्वीर है, लेकिन इस बार उस तस्वीर के आगे सलाखें बनी हैं और लिखा है 20 साल सजा सुन रो पड़े राम रहीम, और बाबर राम रहीम के अदालत में रोने की बात लगभग सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। इसके अलावा एक और बड़ी खबर, भारत और चीन के बीच गतिरोध खत्म हुआ है डोकलाम पर, इस पर दैनिक जागरण लिखता है डोकलाम पर चित्त हुआ चीन, भारतीय कूटनीति का बजा डंका, और लगभग ऐसा ही शीर्षक अमर उजाला ने लगाया है, लिखा है डोकलाम पर 2.5 महीने बाद झुक गया चीन। ये खबर और अखबारों में, सभी अखबारों में पहले पन्ने पर है। एक खबर जनसत्ता से मैं लेना चाहूँगा, जो बता रही है कि साक्षी महाराज और एक रामविलास मंत्री हैं ये हरियाणा सरकार के, इनके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, इन्होंने बाबा गुरमीत राम रहीम के समर्थन में बयान दिया था। आसाराम के खिलाफ धीमी जांच से सुप्रीम कोर्ट नाराज है और ये खबर भी कई अखबारों के पहले पन्ने पर है। इसके अलावा एक और खबर जो ध्यान खींच रही है इंडियन एक्सप्रेस में है, जिसमें एक 70 साल के बुजुर्ग की तस्वीर छपी है जो अस्पताल में भर्ती हैं, उनके सर पे और हाथ पैरों में गंभीर चोटें आई हैं। इन बुजुर्ग को कथित गोरक्षकों ने मारा था, जबकि बुजुर्ग का कहना है कि उनके पास तो कोई गाय ही नहीं है, वो तो उनके पास दो भैंस हैं और कुछ बकरियां थी जिनको बेच के 1.5 लाख रुपये लेकर वो बैंक में जमा करने जा रहे थे। और इन बुजुर्ग का ये भी आरोप है कि वो पैसे उनसे वो कथित गोरक्षक छीन के ले गए। इसके अलावा इनको मरा जानकर छोड़ के गए थे, गुज्जर जाति से हैं ये, लाल हुसैन नाम है इनका, और इनकी कहानी इंडियन एक्सप्रेस ने पहले पन्ने पर छापी है। इसके अलावा जनसत्ता ने बताया है कि जो बाबा गुरमीत राम रहीम करोड़ों में खेलते थे, अब उन्हें रोज सिर्फ 40 रुपये मिलेंगे। और बारिश में मंत्री के घर के छत से टपकने लगा पानी, ये लखनऊ के एक मंत्री ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला था, इससे जुड़ी खबर।
अखबारों की समीक्षा के लिए बहुत शुक्रिया दिलनवाज।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
बीबीसी हिंदी।
अब आगे बढ़ते हैं। भारत और चीन के बीच भारत और चीन डोकलाम से अपनी सेनाएं हटाने को तैयार हो गए हैं। दोनों मुल्कों के बीच इस मुद्दे पर जून से गतिरोध चल रहा था। विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत और चीन ने कूटनीतिक बातचीत जारी रखी और इस आधार पर वहां से सेना हटाने का फैसला किया। वहीं चीन ने इसे एक तरह से अपनी जीत बताया है। इस पर हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने बीजिंग में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार सैबल दास गुप्ता से बात की और सबसे पहले यही पूछा कि दोनों देशों की ओर से बयानों के क्या मायने निकाले जाएं?
देखिए, इसमें तो कोई दो मत नहीं है कि सहमति बनी है और चीन ने इसे कंफर्म किया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चीन का विदेश मंत्रालय ये जताने की कोशिश कर रहे हैं अपने ही ऑडियंस को कि हमने कोई कंसेशन नहीं दिया। एक बार नहीं, तीन बार उन्होंने ये कहा कि भारत ने अपने ट्रूप्स पुल आउट किए, दूसरा ये कहा कि डोकलाम एरिया में हम हमारा पेट्रोलिंग चालू रखेंगे, तीसरा ये है कि चीन अपनी सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी और अपनी सुरक्षा बॉर्डर की सुरक्षा के लिए जो भी जरूरी है वो सारा कुछ कर रही है। चीन में आज परिस्थिति यह है कि यहाँ बहुत लोग प्रश्न चिन्ह लगाने लगे हैं कि हमारी सरकार 2 महीने से कह रही है कि कोई घुस गया है तो धक्के मार के क्यों नहीं निकाल रही है। ये जो सवाल सोशल मीडिया में बार बार आ रहा था, इसको एड्रेस करने के लिए इस तरह से एक्सप्लेनेशन चीन ने आज दिया। भारत में अगर हमारे नेता लोग और अफसर लोग इमैच्योरिटी दिखाते हैं, ये समझने की कोशिश नहीं करते हैं कि लोकल ऑडियंस को खुश करने की कोशिश की जा रही है, इसको अगर चैलेंज करते हैं और कहते हैं अरे नहीं नहीं उनको तो हमने भगाया, तो हम फिर से प्री डोकलाम वाले परिस्थिति आ जाए। किसी को तो कहीं मैच्योरिटी दिखाना पड़ेगा, ये एग्रीमेंट आसानी से नहीं बना है।
हालांकि इस पूरे मामले में जितने दिन भी ये विवाद चला, भारतीय पक्ष की तरफ से समझदारी भरे बयान ही ज्यादा देखने में आए, तो भारत से अब क्या और उम्मीद करता है चीन?
तो अगर भारत काउंटर करती है या चैलेंज है तो फिर वही हॉट वर्ड्स का एक्सचेंज शुरू हो जाएगा, एक तो ये। दूसरा ये है कि चीन के लिए ब्रिक्स समिट जो है वो इम्पोर्टेंट है। चीन अपने आप को अमेरिका की तुलना में नंबर 2 से भी आगे जाना चाहते, दुनिया को दिखाना चाहते, तो चीन ने कुछ संस्थाएं बनाई, एक तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक बनाई है, दूसरा ब्रिक्स बैंक बनाया है, तीसरा शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जो शंघाई में हेडक्वार्टर्स, ब्रिक्स का भी हेड ऑफिस बीजिंग में बनाया गया है। ये दुनिया के आगे ये बताना चाहती है कि देखिए अमेरिका जैसे संस्थाएं बनाती है हम भी ऐसे संस्था बनाते। तो अगर भारत का प्राइम मिनिस्टर नहीं अटेंड करता है तो ब्रिक्स का आने वाला शियामेन में सितंबर 2 वाला जो कॉन्फ्रेंस है वो तो बहुत बुरी तरह से उसे झटका मिलेगा। सारी दुनिया की नजर तो इसी पर रहेगा ना कि मोदी आए या नहीं आए। ये ओपनली तो शायद इंडिया ने हाथ नहीं मरोड़ा होगा, लेकिन बैकग्राउंड में इस बात को जहन में लेके नेगोशिएट हुआ है कि ब्रिक्स में वो चाहते हैं कि मोदी आए, इसीलिए ये एग्रीमेंट करवाया है।
भारत को क्या हासिल हुआ इस पूरे विवाद और तनाव से?
भारत को जो हासिल हुआ है इससे पहले की सरकारों में नहीं हुआ है। ये मोदी सरकार का ह्यूज अचीवमेंट है या एक्सीडेंटल अचीवमेंट है मुझे नहीं पता, वो इतिहास बोलेगा। एक ऐसी परिस्थिति की इतिहास में पहली बार चीन ने कहा और 2 महीना तक चीन रोती रही कि भारत इस पर अंदर आ गए। भारत तो हमेशा इन्वेशन का शिकार हुआ है, आप इतिहास को तो ये पहली बार ये जो दुनिया में इज्जत है और चीन को जिसके आगे अमेरिका को डर लगता है, यूरोप तो दबी हुई है, उसको सामना भारत कर पाया और वॉर को भी अवॉइड कर लिया। अगर वॉर हो जाती तो इज्जत नहीं रहती। दोनों के बीच से जो भारत निकल गया ये भारत की डिप्लोमेसी और भारत की हिम्मत की दाद दुनिया तो देगी।
ये थे वरिष्ठ पत्रकार सैबल दास गुप्ता। बिहार में बाढ़ की वजह से 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा लोग प्रभावित हैं और मरने वालों की संख्या बढ़कर 514 हो चुकी है। लोग दुखी हैं, परेशान हैं और यही परेशानी अब कुछ भोजपुरी गानों में दिख रही है। मुजफ्फरपुर से रवि प्रकाश की रिपोर्ट।
मैंने मुजफ्फरपुर के रजबारा गांव में यह गाना सुना। यहाँ बूढ़ी गंडक नदी पर बना बांध टूट गया है और इस कारण मुसहरी प्रखंड के कई गांवों के साथ ही मुजफ्फरपुर शहर के खादी भंडार, बेला, अखाड़ा घाट आदि इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है। रजवाड़ा के लोग चारों तरफ से पानी से घिरे हैं, बांध पर अपनी जिंदगी काट रहे हैं। इसी दौरान बाढ़ पर केंद्रित यह गाना उनके दर्द को साझा करता प्रतीत होता है। भोजपुरी बिहार में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। चंपारण, सारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, छपरा, आड़ा आदि क्षेत्रों में भोजपुरी बोली जाती है। वहीं मैथिली, बजिका, मगही जैसी दूसरी बिहारी बोलियों को बोलने वाले लोग भी भोजपुरी बोलते और समझते हैं। इस कारण यहां भोजपुरी के गाने काफ़ी पसंद किए जाते हैं। यही वजह है जो भोजपुरी गायकों का अपना स्टारडम है और सुख या दुख की घड़ी में उनके गाए गाने लोगों की जुबान पर रहते हैं। भोजपुरी गायक वैसे तो फूहर गानों के लिए बदनाम होते रहे हैं, लेकिन इन्हीं गायकों ने देश दुनिया के तमाम मसलों पर अपनी गायकी के माध्यम से प्रतिक्रियाएं भी दी हैं। अब जब बात बिहार के बाढ़ की है तो वे भला कैसे पीछे रहते। लिहाजा कई गायकों ने बाढ़ पर दर्जनों गाने लिखे और गाए हैं। इन दिनों ये गाने खूब बज रहे हैं। यह आंचलिक गानों का क्रेजी है कि चर्चित सांसद पप्पू यादव भी बाढ़ पीड़ितों के दुख पर गीत गाने से नहीं चुकते। सुनिए पप्पू यादव क्या गा रहे हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों के भ्रमण के दौरान उन्हें कई मौके पर यह गाना गाया। मुजफ्फरपुर के मोती झील में श्याम टाकिस के पास भोजपुरी गानों की सीडी बेचने वाले मोहित बताते हैं कि लोग ऐसे सीडी खोज कर खरीदते हैं और कुछ ही दिनों के लिए सही इनकी डिमांड बढ़ जाती है। बाढ़ पर बने इन गानों के बहाने लोग थोड़ी देर के लिए अपने दुखों से उबरने की कोशिश करते हैं। रवि प्रकाश, BBC के लिए मुजफ्फरपुर में।
और अब वक्त है खेल समाचारों का।
खेल की दुनिया की खबरों के साथ मैं हूँ सुमिरन प्रीत कौर। कल से शुरू हुआ अमेरिका में US ओपन। इस बार US ओपन में एंडी मरे, नोवाक जोकोविच, स्टैनिस्लास वावरिंका, मिलोस राउनिक और की निशिकोरी जैसे खिलाड़ी भाग नहीं ले रहे। 15 महीने की एंटी डोपिंग सस्पेंशन के बाद लौटी टेनिस खिलाड़ी मारिया शारापोवा का इस बैन के बाद ये पहला ग्रैंड स्लैम है और आज इनका मुकाबला है वर्ल्ड नंबर 2 सिमोना एलिप के साथ। 6 बार मारिया शारापोवा से हार चुकी सिमोना एलिप का कहना है कि मारिया शारापोवा एक अच्छी खिलाड़ी हैं। आज यानी 29 अगस्त को जन्मदिन है मेजर ध्यानचंद का। इसे राष्ट्रीय खेल दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। आज बहुत से खिलाड़ियों को उनकी अलग अलग उपलब्धियों के लिए राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड और ध्यानचंद अवार्ड से नवाजा जाएगा। रियो ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतने वाले पैरालंपियन देवेंद्र झझरिया को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से नवाजा जाएगा। स्पोर्ट्स की दुनिया से फिलहाल इतना ही।
चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर।
उत्तर कोरिया ने एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी है जो समुद्र में गिरने से पहले जापान के ऊपर से होकर गई है। इस मिसाइल के कारण जापान में चेतावनी सायरन बज गए। सीबीआई की विशेष अदालत ने धर्मगुरु बाबा गुरमीत राम रहीम को बलात्कार के 2 मामलों में 10-10 साल की सजा सुनाई है जो अलग अलग चलेगी, यानी बाबा राम रहीम को 20 साल जेल में बिताने पड़ेंगे। अमेरिका के टेक्सास प्रांत के गवर्नर ग्रेग अबॉट का कहना है कि प्रांत के सभी 12,000 नेशनल गार्ड सदस्यों को बचाव अभियान में लगाया जाएगा। यहां के ह्यूस्टन शहर में भारी बाढ़ आई है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के भूमध्य सागर से आने वाले प्रवासियों की संख्या कम करने के लिए 3 सूत्री कार्यक्रम को समर्थन मिल रहा है। अमरीका के न्यू मैक्सिको प्रांत की एक लाइब्रेरी में गोलीबारी की खबरें हैं। BBC समाचार।
तो इसी के साथ नमस्कार, भारत की ये सभा यहीं समाप्त होती है। आपसे हमारी अगली मुलाकात शाम 7:30 बजे दिन भर में होगी। इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया देवाशीष कुमार ने और फेसबुक पर इसे आप तक पहुंचाया सिंधु वासिनी ने। तो अब कुलदीप मिश्र को दीजिए अनुमति। नमस्कार।